ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 21 दिसंबर 1968। मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठे रोज रोज समझाते हैं। ये तो समझाया है बच्चों को कि ज्ञान भक्ति और वैराग ये सृष्टि का चक्र कैसा बना हुआ है। तुम बच्चों को हद और बेहद से पार जाना है। बाप तो हद और बेहद से पार है, उनका भी अर्थ समझाना चाहिए। सतयुगो त्रेता ज्ञान का सार है, द्वापर कलयुग भक्ति है। और द्वापर कलयुग के बाद संगम युग आता है, हद और बेहद से पार जाने के लिए। बाप भी बेहद के पार है, ये रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। वो भी टॉपिक समझाई है कि ज्ञान उसके बाद भक्ति फिर पीछे वैराग्य। ज्ञान कहा जाता है सतयुग त्रेता रूपी दिन को, जबकि नई दुनिया होती है। उसमें भक्ति का ज्ञान नहीं है, वो भी है हद की दुनिया, क्योंकि वहां बहुत थोड़े होते हैं। फिर आस्ते आस्ते वृद्धि को पाते हैं, आधा समय के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। जहां भक्ति होती है वहां फिर संन्यास धर्म होता ही नहीं है। बल्ब सन्यासी अपनों को कहते हैं कि हम सन्यासी हैं। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। संपूर्ण जगत का त्याग कर दिया, देह का त्याग कर दिया, देह के संबंधों का त्याग कर दिया, फिर तो आत्मा परमधाम वासी हो जाए। तो द्वापर कलयुग में संन्यास नहीं होता है। वहां तो बाद में सृष्टि की वृद्धि होती जाती है, और ऊपर से और ही आत्माएं उतरती जाती है। तो यहां इस दुनिया में वृद्धि होती है, हद से शुरू होकर के फिर सृष्टि बेहद में जाती है। बाप की तो हद और बेहद से पार दृष्टि जाती है। बाप जानते हैं कि हद में कितने थोड़े बच्चे होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि हो जाती है। हद की दुनिया में ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 9 लाख, फिर बेहद में 500-700 करोड़। तो कहां 9 लाख और कहां 500 करोड़। अभी तो तुमको हद और बेहद से भी पार जाना है। सतयुग में कितनी छोटी दुनिया है, वहां संन्यास व वैराग आदि होता ही नहीं है। बाद में भी फिर द्वापर से लेकर और धर्मों की वृद्धि शुरू हो जाती है। बल कहने को संन्यास धर्म होता है, वो तो सिर्फ घरबार का त्याग करते हैं, संपूर्ण न्यास कहां करते हैं। ये बात सभी को जाननी तो चाहिए ना। तो उनको हठ योगी कहा जाता है और हद का संन्यास है। सिर्फ घर बार छोड़ करके जंगल में जाते हैं, द्वापर से भक्ति शुरू होती है। तो उनका भी कहेंगे भक्ति मार्ग। ज्ञान तो जैसे है ही नहीं, ज्ञान माना ही सतयुग त्रेता। उनको सुख का ज्ञान होता ही नहीं है। ज्ञान के बदले में तो सुख आना चाहिए। भक्ति का रिजल्ट है अज्ञान, और अज्ञान से होता है दुख। जहां दुख है वहां जरूर अज्ञान है, उसको कहेंगे भक्ति। बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि टिकती ही नहीं। सतयुग त्रेता में तो द्वापर के मुकाबले कितने बुद्धि का टिकाव होता है। देवताओं की बुद्धि सदैव आत्मा में टिकती है। बुद्धि को भगाने करने की दरकार ही नहीं। तो ये बात अच्छी रीति समझानी होती है। तो ये हुआ सुख और दुख का खेल, ज्ञान और अज्ञान का खेल। फिर दुख और सुख दोनों से परे जाना है, अर्थात हद और बेहद से भी पार जाना है। मनुष्य जांच करते हैं ना, कि कहां तक समुद्र है, कहां तक आसमान है, पार पाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु न समुद्र की गहराई का पार पाते हैं और न आसमान को क्रॉस कर सकते। बल एरोप्लेन से जाते हैं परंतु उसमें भी इतना तेल चाहिए जो फिर वापस लौट सके। बहुत बहुत दूर तक जाते हैं परंतु कोई भी बेहद में तो जा ही नहीं सकते। फिर भी जावेंगे हद तक, उनकी हद है सितारों तक। तुम तो हद और बेहद से भी पार जाते हो, तो अभी तुम जो समझ सकते हो कि पहले नई दुनिया में होती है हद, बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, उनको सत्य युग कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि ये नॉलेज और कोई में तो हो ही नहीं सकती। औरों को समझाने वाले और धर्मों के बाप हैं, वो हद के बाप हैं, और तुमको समझाने वाला तो बेहद का बाप है। वो बेहद से भी पार रहने वाला है। तो ये बातें और कोई समझा ही नहीं सकता। रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं, फिर अंत में कहते हैं कि इससे भी पार चले जाओ। वहां तो फिर कुछ भी नहीं रहता। आसमान से भी पार चले जाते हैं, सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार। उसको कहा जाता है हद और बेहद से पार। उसका तो कोई भी अंत नहीं पा सकते। कहेंगे बेअंत, अब कह देना तो सहज है, परंतु बेहद का बेहद अंत का अर्थ भी तो समझना चाहिए ना। अभी तुमको तो बाप समझ देते हैं। बाप कहते हैं मैं जो कुछ जानता हूं, हद को भी जानता हूं, बेहद को भी जानता हूं, और बेहद के पार को भी जानता हूं। फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन हुए हैं। दृष्टि चली जाती है सत्युग की हद की तरफ। फिर उससे पार तो कुछ भी नहीं। हम पार चले जाएंगे। सूरज चांद सितारों के भी पार, जहां हमारा शांति धाम स्वीट होम है, यूं तो सतयुग भी स्वीट होम है, क्योंकि वहां तो शांति भी है और सुख भी है। दोनों ही हैं। घर में जावेंगे तो वहां सिर्फ शांति होगी, वहां सुख का नाम नहीं लेंगे। तो अभी तुम शांति भी स्थापन कर रहे हो और अपनी आत्मा के लिए सुख भी स्थापन कर रहे हो। वहां नई दुनिया में शांति भी है, सुख भी है। वहां है ही सुख का राज्य। मूल वतन में तो सुख की बात ही नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सभी बातें हैं, दुनिया के मनुष्य तो नहीं जानते। आधा कल्प तुम्हारा राज्य चलता है, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य आता है, राम राज्य, फिर रावण राज्य। रावण राज्य में अशांति और दुख, ये होता ही है पांच विकारों से। ढाई हजार वर्ष तुम राज्य करते हो, फिर ढाई हजार वर्ष के बाद रावण राज्य होता है। उन शास्त्रकारों ने तो लाखों वर्ष लिख दिया, तो एकदम सारी दुनिया को जैसे बुद्धू बना दिया। पांच हजार वर्ष के कल्प को लाखों वर्ष कह देना बुद्धू बना है ना, जरा भी सभ्यता नहीं है। देवताओं में कितनी सभ्यता थी, देवताओं में जो सभ्यता थी, जो श्रेष्ठता थी, वो अभी भ्रष्ट बन पड़े हैं, असभ्य बन पड़े हैं, जैसे कि कुछ भी नहीं जानते। कितने आसुरी गुण आ गए, आ गए तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। न जानने के कारण काम कटारी चलाकर आदि मध्यंत दुखी दुखी बनाते रहे, इसलिए इनको कहा जाता है रावण संप्रदाय। दिखाते भी हैं कि राम ने बंदर सेना ली, अभी रामचंद्र तेता का बा, फिर ये गंदे बंदर कहां से आ गए। फिर कहते हैं राम की सीता चुराई गई। अब राम की सीता चुराई ली जाएगी तो सुख और शांति की दुनिया कैसे कहेंगे, उसे राम राज्य कैसे कहेंगे। अब ऐसी बातें तो वहां होती नहीं। ऐसी कोई भी गंदगी वहां हो नहीं सकती। जो विविचार की बात पैदा करे। इक्कीस बारह अड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। जीव जंतु जानवर आदि 84 लाख योनियां जितनी यहां हैं, उतनी सतयुग त्रेता में थोड़े ही होंगी। ये सारा बेहद का ड्रामा बाप बैठ समझाते हैं। बच्चों को तो बहुत दूरंदेशी बनना है, क्योंकि आगे तो तुमको कुछ भी पता नहीं था। मनुष्य हो करके और नाटक को जानते ही नहीं थे। अभी तुम तो समझते हो कि सबसे बड़ा कौन है, ऊंच के ऊंच कौन है। अभी तुम्हारे सिवाय और कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाप समझाते हैं, हमारी बुद्धि कहां तक जाती है। हद और बेहद दोनों का राज समझाते हैं। हद और बेहद के पार वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ तुम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मांड अथवा ब्रह्मन व महत्तत्व कहते हैं। यहां तो तुम जैसे आकाश तत्व में बैठे हो, इनमें तो कुछ देखने में आता है। आकाश क्या है? पोलार ही पोलार। नाम रख दिया है आकाश। है तो पोलार। रेडियो में भी कहते हैं आकाशवाणी। अभी आकाश तो बेअंत है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं पा सकते। तो बताओ, आकाशवाणी कहने से मनुष्य क्या समझेंगे? ये जो मुख है, ये भी तो पोलार है। इस मुख रूपी पोलार से वाणी निकलती है, मुख से आवाज निकलता है ना। तो ये पांच तत्वों का शरीर है। तो इस मुख से आवाज निकलता है, इसलिए रेडियो में आकाशवाणी कहा जाता है। ये तो कॉमन बात है। और कोई आंख नाक व कान से वाणी निकलेगी क्या? आवाज तो मुख से ही निकलेगी, जिसको आकाशवाणी कहते हैं। तो बाप को भी इस मुख रूपी आकाश अर्थात पोलार के द्वारा वाणी चलानी पड़े। बाप आकर के तुमको भी अपना सारा राज बताते हैं। तुमको निश्चय होता है और बहुत सहज निश्चय बैठ जाता है। जैसे हम आत्मा हैं, वैसे बाप परमपिता परमात्मा भी आत्मा है। हाँ, वो है ऊंचते ऊंचे आत्मा, ऊंचे ऊंचे पाटधारी है। ऐसे तो सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सबसे ऊंचे पार्ट इन लक्ष्मी नारायण को मिला हुआ है। तो ये खेल है, नई दुनिया में रहने वालों में नंबरवार हैं। तो कौन कौन नंबरवार हैं वो फिर विजयमाला में देखो। ऊपर में है फूल, फिर प्रवृत्ति मार्ग का युगल मोयरू, उसके बाद नंबरवार माला देखो कितनी थोड़ी है, फिर षष्ठी बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी हो जाती है। अभी तो कहेंगे 500 करोड़ दाने, अर्थात 500 करोड़ आत्माओं की माला। तो ये सभी पढ़ाई की बातें हैं। बाप जो समझाते हैं उसको अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। जाड़ की डिटेल तो तुम बच्चे सुनते हो। बीज ऊपर में है और फिर ये है वैरायटी झाड़, इनकी आयु कितनी है, ये झाड़ तो वृद्धि को पाता रहता है। रचयिता और रचना के आज बंधन का राज अभी तुम बच्चों को समझाया, तो सारा दिन ये बुद्धि में रहे। इस षष्ठ चक्र की कल्प वृक्ष की आयु बिल्कुल एक्यूरेट, 5000 वर्ष से 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अभी कितनी नॉलेज है। जो अच्छे मजबूत बच्चे हैं, मजबूत तो तब होंगे जब पवित्र बनेंगे। इस नॉलेज की धारणा के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तुम्हारा बुद्ध रूपी बर्तन सोने का बन जाएगा तो फिर ऐसे सहज हो जाएगा जैसे कि बाबा के लिए सहज है। फिर तुमको कहेंगे मास्टर नॉलेजफुल। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माला का दाला बन जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बाप बिगर और कोई तो समझा ही नहीं सकता। ये बातें भी आत्मा समझा रही है। ऊंचते ऊंच बाप की आत्मा स्तन द्वारा समझाती है। ऐसे तो नहीं कि कोई देवता के तन से समझाती है। बाप एक ही बार आकर के गुरु बनते हैं, फिर बाप को ही पाठ बजाना होगा। 5000 वर्ष के बाद आकर के पाठ बजावेंगे तो बाप समझाते हैं मैं ऊंचते ऊंच हूं, फिर मेरे बाद नंबर है मेरु का। जो आज में महाराजा महारानी थे वो फिर अंत में जाकर के देवता बनेंगे, आदि देव। ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तुम कहां भी समझाओ तो बंदर खावेंगे, ये तो ठीक बताते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूपी ही नाले सोल है, उनके बगैर कोई भी नॉलेज नहीं दे सकता। तो ये सभी बातें धारण करनी है, परंतु बच्चों को धारणा होती नहीं है। ऐसे है तो बहुत सहज, समझने और समझाने में कोई मुश्किलात नहीं है, परंतु इसमें एक तो याद की यात्रा चाहिए। जो फिर पवित्र बर्तन में रतन ठहर सके, क्योंकि ये ऊंचे के ऊंचे रतन हैं। बाबा तो पहले भी व्यापारी था, बहुत अच्छा हीरा माणिक आदि आता था, तो चांदी की डिब्बी में कपूस आदि में अच्छी रीति रखते थे। जो कोई भी खोलेंगे तो कहेंगे ये तो कोई जरूर फर्स्ट क्लास चीज है। तो ये भी ऐसे है, अच्छी चीज होती है तो वो अच्छे बर्तन में शोभती है। अभी तुम्हारे कान सुनते हैं, उसमें धारणा होती है। शुद्ध बुद्धि होगा, बुद्धि योग बाप से होगा, तो धारणा अच्छी होगी, नहीं तो सभी निकल जाएगा। आत्मा का रूप भी कितना छोटा है, और इतनी छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान भरा हुआ है, तो कितना अच्छा शुद्ध बर्तन चाहिए। कोई भी संकल्प न उठे, सभी उल्टे सुलटे संकल्प बंद हो जाने चाहिए। सारी दुनिया से बुद्धि योग हटाना है। मेरे साथ योग लगाते लगाते तुम्हारा बर्तन सोने का बन जाएगा, जिसमें सारे रतन ठहर जाएंगे। इक्कीस बारह अड़सठ की वाणी का तीसरा पेज। तो तुम दूसरों को भी दान करते रहेंगे, भारत को महादानी माना जाता है। वो भारत धन दान तो बहुत करते हैं, परंतु ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। देह सहित जो कुछ भी है सभी को छोड़ करके एक के साथ बुद्धि योग रहे। हम तो बाप के बने हैं, तो एक बाप का बनने में बड़ी मेहनत लगती है। एम आद्यक तो बाप बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तभी इतना उच्च पद पा सकेंगे। इतना पुरुषार्थ हो जो कोई भी उल्टा सीधा विकल्प ना आवे। बाप तो ज्ञान का सागर है, हद और बेहद से भी पार है। हद और बेहद की सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो बाबा हमको देखते हैं, ऐसा तुम समझते हो, परंतु मैं तो हद और बेहद के ऊपर चला जाता हूं। क्योंकि मैं तो रहने वाला भी वहां का ही हूं, तो तुम भी हद और बेहद से पार चले जाओ। संकल्प विकल्प कुछ भी नहीं आना चाहिए। परंतु इस अवस्था में बड़ी मेहनत चाहिए। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र बनना है। घर बार छोड़ करके भागने की बात नहीं। कहते भी हैं कम कार्डे दिलयाड़े। तो बाप कहते हैं ये ज्ञान जितना गृहस्थी उठाते हैं उतना वो सन्यासी नहीं उठा सकते। सेंटर चलाने वाले मुरली चलाने वाले भी नापास हो जाते हैं। और जो पढ़ने वाले हैं वो ऊंचे चले जाते हैं। आगे चल के तुमको सब मालूम पड़ेगा, पता पड़ता जाएगा कि बाबा तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। हमको जो इतना पढ़ाती थी उनको माया खा गई। महारथी को माया एकदम हप कर गई, आज है ही नहीं। ऐसे ऐसे मायावी ट्रेटर बन जाते हैं। विलायत में भी ट्रेटर बन जाते हैं। कहां कहां जाकर के शरण लेते हैं। जो पावरफुल होते हैं वो फिर उस तरफ चले जाते हैं। कितना अहंकार आ जाता है। इस समय तो चारों ओर मौत है, जावेंगे कहां। तो बहुत ताकत वाले होंगे वो ही पास में आवेंगे। अभी तुम तो समझते हो बाप ही पावरफुल है, बाप सर्वशक्तिवान है। हमको सिखलाते सिखलाते सारे विश्व का मालिक बनाए देते हैं। वहां हमको सभी कुछ मिल जाता है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसकी प्राप्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें। वहां कोई ऐसी चीज होती नहीं जो तुम्हारे पास न हो। तो फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही पद भी पाते हैं। बाप बिगैर ऐसी बातें कोई जानते ही नहीं है। सभी पुजारी हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य आज हैं, बाबा उन्हों की महिमा भी सुनाते हैं। पहले तो उन्होंने पवित्रता की ताकत से भारत को अच्छा थमाने के लिए निमित्त बने थे। सो भी जब सतो प्रधान थे तब, अभी तो तमो प्रधान है, तो उनमें क्या ताकत रखी है। शंकराचार्य खुद दिखाते हैं हम पुजारी हैं, सभी तरह के चित्र आदि रखते हैं। तो पूजे एक भी नहीं है। अभी तुम जो पुरारी पुजारी थे सो फिर पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप ने समझाया है तुम पहले अभी विचारी पुजारी थे, क्योंकि एक ही पूजा करते थे। पहले पहले जब आप मार्ग शुरू होता है तो तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, सो भी अभी विचारी पुजारी। फिर स्थिति जागरा फिर रिपीट होती है, तो अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और सारा ज्ञान सेकंड का है। बुद्धि में धारण रहे और तुम समझाते रहो, बाकी सारे सृष्टि का सारे झाड़ के आदि मध्यंत का रास बताते हैं। बच्चों को भी बहुत मीठा बनने का है, क्योंकि ये माया का युद्ध है, माया के तूफान बहुत आते हैं, तो उन तूफानों को सहन करना पड़ता है। बाप की याद में रहने से तूफान भी चले जाएंगे। हातिमताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलेरा मुख में डालते थे और माया चली जाती थी, मुलेरा निकालने से माया आ जाती थी। छुई मुई होती है ना, हाथ लगाओ तो घास मुरझा जाएगी। तो ये माया भी बड़ी तीखी है, इतना ऊंच पढ़ाई पढ़ते पढ़ते बैठे बैठे गिरा देती है। इसलिए बाप समझाते रहते हैं, अपन को भाई भाई समझो तो तुम बहुत जल्दी हद और बेहद से पार चले जाओगे। जब शरीर ही नहीं है तो फिर दृष्टि कहां जाएगी। इतनी तुमको मेहनत करनी है। ये बातें सुनकर के ही फा नहीं हो जाना चाहिए। कल्प कल्प तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है और कल्प कल्प तुम अपना भाग्य बनाते हो। अभी बाप कहते हैं, जो भी पढ़ा हुआ है सभी भूलो, बाकी जो कुछ नहीं पढ़े हो वो सुनो और याद करो। उनको कहा जाता है भक्ति मार्ग का भूसा, वो पढ़ते पढ़ते मनुष्य भूसे जैसे बन गए। तुम तो राज ऋषि हो, जटाएं खुली हुई हो और धड़ाके से मुरली चलाओ। साधु संतादि जो सुनाते हैं वो सब मनुष्यों की मुरली सुनाते हैं। ये तो बेहद के बाप की मुरली है, सत्युग त्रेता में तो ज्ञान की मुरली की दरकार ही नहीं होगी। वहां न ज्ञान की दरकार है न भक्ति की दरकार है। ये ज्ञान तुमको एक ही संगम युग पर मिलता है और देने वाला भी एक ही बाप है। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अभी तो कोई विकल्प नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। आ गया तो
जब बाबा के साथ कैसे आएगा,
और न हुआ बाबा साथ तो
साथ होगी। बाबा कभी ऐसे
किसी ने पर्चा भेजा, पूछा राजा राम रोज मुरली कहाँ सुनते हैं, रोज का क्लास कहाँ करते हैं। अंजलि माता घर में रोज मुरली सुनते हैं, अंजलि माता बैठी हुई है यहाँ है। हाँ, इस पर्चे में पूछा है ज्ञान इतना श्रेष्ठ है तो जो समझदार बच्चे बनते हैं वो रोज मुरली सुनते होंगे। आप तो बात घुमाई दी,
क्या
याद तो हर करता हूँ। याद अलग बात, भोजन अलग, पानी अलग,
लेकिन मुर्गी पहले तो चार चार बार जाके
सुनता था, जब सुनता था तब सुनता था। अभी की बात बताओ,
अभी की मैं दो बार और मैं करता जब कभी जाता सुन के आता,
जब कभी जाता हूँ तब, और नहीं जाता हूँ तो
मैं नहीं जाता हूँ तो याद करता हूँ,
तो याद करता हूँ। ज्यादा भोजन कर लेने से फिर गर्मी चढ़ जाती है, इसलिए पानी बार बार पिया जाता है या भोजन बार बार खाया जाता है। है पानी तो रोज ही पीना पड़े, और
याद किया
अगर
नहीं याद करता हूँ, अगर नहीं याद करता हूँ तो सही है। मुरली पॉइंट आती है याद में, उसके ऊपर मन चित्र मंत्र करता तो वो मुरली हो गई ना।
और याद व्यभिचारी हुई तो
मुर्गी सुनना होगा,
अगर याद व्यभिचारी हुई तो
जल्दी से हो जाएगी। एक बात किया दूसरे याद नहीं आता,
दूसरा याद ही नहीं आता। अरे आठ में तो तुम ही आ जाओगे है,
जबकि तो बैठता ना तो बाबू की शरीर को याद नहीं आता, दुनिया भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं।
चलो राजा राम तो राजा राम बन गया,
अगर कोई याद आए बीच में तो मैं बुद्धि से होगा था, अगर मैं और पापा सामने बैठा हूँ सामने मेरे आंगन में तेरा का काम है, ऐसा बोलता हूँ तो लोग बात करते हैं।
डांस तो नहीं करने लग पड़ते,
ज्ञान का डांस तो करता हूँ लेकिन खुशी नहीं रहता हूँ।
चलो आज तो राजा राम ही राजा राम।